नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रगीत ने आजादी के आंदोलन में जान फूंकी और पीढ़ियों को प्रेरित किया। संसद ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पारित किया। सरकार ने हवाई सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए विमान सेवा रद्द होने के बाद आए संकट पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। भारत ने देश विरोधी चरमपंथियों पर ब्रिटेन की कार्रवाई का स्वागत किया। चीन से ट्रांजिट के दौरान भारतीय यात्रियों को परेशान नहीं करने को कहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में शीतलहर की संभावना व्यक्त की। और पुरुष हॉकी में भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा मैच आज रात केपटाउन में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में इस समय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा चल रही है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1875 में लिखा था। चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के मंत्र ने समूचे देश को शक्ति और प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जावान बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वंदे मातरम का स्मरण इस सदन के सभी सदस्यों और देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है।
भारत हर चुनौतियों को पार करने में सामर्थ्य है। वंदे मातरम के भाव की वो ताकत है। वंदे मातरम ये सिर्फ गीत या भाव गीत नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के लिए हमें जगजोड़ने वाला काम है और इसलिए हमें निरंतर इसको करते रहना होगा। हम आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, इसको पूरा कर रहा है। वंदे मातरम हमारी प्रेरणा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम की 100वीं वर्षगांठ के समय देश में आपातकाल लगाया गया।
जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए, तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया।
प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के मुद्दे पर मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके खिलाफ नारे लगाए थे और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना की निंदा करने के बजाय जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही वंदे मातरम की जांच शुरू कर दी थी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रगीत ने आजादी के आंदोलन में जान फूंकी और पीढ़ियों को प्रेरित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन को शक्ति और दिशा दी।
यह वंदे मातरम भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इस वंदे मातरम ने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काफी ताकत दिया था। वंदे मातरम वह गीत है अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण सदियों से सोया हुआ यह हमारा भारत देश जाग उठा था। वह गीत आधी शताब्दी तक स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक बना रहा।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर बहस को राजनीतिक रंग देने की कोशिश का आरोप लगाया।
वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम की पीछे की भावना सांप्रदायिक राजनीति को खारिज करना है। जनता दल यूनाइटेड के देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि जागृति का एक राष्ट्रीय आह्वान है। भाजपा ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वंदे मातरम पर चर्चा शुरू करने के समय सदन में उपस्थित नहीं होने की आलोचना की। पार्टी सांसद समित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वंदे मातरम के प्रति कांग्रेस पार्टी के धोखे को बेनकाब किया है।
वंदे मातरम को एक प्रबल भावना बताते हुए कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी का जो विश्वासघात वंदे मातरम के प्रति रहा था, उसका उजागर किया है और एक तरह से ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गांधी परिवार को पूर्णतः एक्सपोज करती है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसद ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में पान मसाला और केंद्र सरकार से अधिसूचित किसी भी अन्य वस्तु के उत्पादन पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है। उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग जन स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यय किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये उपकर नागरिकों के स्वास्थ्य और देश की सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक व्यवस्था प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि उपकर केवल हानिकारक वस्तुओं पर लगाया जाएगा।
इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व के दो क्षेत्रों स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक विस्तृत पूर्वानुमानित और समर्पित संसाधन प्रवाह तैयार करना है। ये उपकर उन लोगों के लिए एक निवारक के रूप में है जो इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ये उपकर आम नागरिकों पर कोई बोझ नहीं डालता है। ये एक उपकर है, उत्पाद शुल्क नहीं, और ये GST व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करता है।
नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि हवाई यात्रा की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उड़ान ड्यूटी समय सीमा FDTL दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन पर श्री नायडू ने राज्यसभा को बताया कि सरकार कई उड़ानों के रद्द होने की स्थिति की जाँच कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी।
We are not taking this situation.
हम इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं। हम जांच कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर नागर विमानन में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या किसी भी संचालक द्वारा कोई भी नियम तोड़ा जाता है तो हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि हम इंडस्ट्री में एक मिसाल कायम कर सकें।
So that we set an example in the industry.
श्री नायडू ने बताया कि सरकार ने कुछ उड़ानों के रद्द होने और क्षमता की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए पूरे देश में हवाई किराए की सीमा तय कर दी है। सरकार ने दूरी के आधार पर 4 मूल्य निर्धारण स्लैब बनाए हैं। इस बीच इंडिगो एयरलाइन ने नागर विमानन महानिदेशालय के कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है। इंडिगो ने इसे बेहद असुविधाजनक बताते हुए ग्राहकों को हुई असुविधा और कठिनाई के लिए खेद व्यक्त किया है। महानिदेशालय इस जवाब की जांच कर रहा है और उचित न होने पर कार्रवाई करेगा। इस बीच इंडिगो ने आज कहा कि 827 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वापस कर दी गई है और शेष राशि 15 दिसंबर तक वापस कर दी जाएगी। यात्रियों को 4,500 से अधिक बैग सौंप दिए गए हैं और शेष अगले 36 घंटों में सौंप दिए जाएंगे। आज 1,800 से अधिक उड़ानें संचालित की जा रही हैं। भारत ने आतंक और उग्रवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई मजबूत करने के लिए भारत विरोधी उग्रवादी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने के ब्रिटेन सरकार के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। इससे अवैध धन के लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क पर अंकुश लगाने में भी सहायता मिलेगी। चीन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के संबंध में श्री जायसवाल ने चीन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रित करने वाले नियमों का सम्मान करने का आह्वान किया है।
चीनी सरकार अधिकारी इस बात का आश्वासन प्रदान करें कि चीनी हवाई अड्डों से गुजरने वाली भारतीय नागरिक को किसी प्रकार का निशाना नहीं बनाया जाएगा, न ही मनमाने ढंग से उन्हें रोका जाएगा या परेशान किया जाएगा, और चीनी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रण करने वाले नियमों का पालन करेंगे। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिकों को सलाह देता है कि वो उचित सावधानी बरतें जब वो चीन की यात्रा कर रहे हों।
श्री जायसवाल ने अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताने वाली पाकिस्तान की टिप्पणी को भी खारिज किया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान अफगान सीमा पर हुई झड़पों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत निर्दोष अफगान लोगों पर ऐसे हमलों की निंदा करता है। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत आज श्रीलंका को INS घड़ियाल जहाज से 700 मीट्रिक टन आपातकालीन राहत सामग्री त्रिंकोमाली भेजी। भारतीय नौसेना के 3 जहाजों पर 300 टन राहत सामग्री कल श्रीलंका को सौंपी गई थी। इस खेप के पहुंचने के साथ ही राहत सहायता की कुल मात्रा अब 1,058 मीट्रिक टन हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने आज ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए एक अभिरुचि पत्र सौंपा है। नई दिल्ली में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विश्व स्तर पर शीर्ष 20 में से एक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2014 से भारत के गन्ना उत्पादन में 44% की बढ़ोतरी हुई है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कृषि सम्मेलन में कहा कि सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत किसानों की उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए एक प्रावधान भी पेश किया है। दिल्ली की एक अदालत ने 10 नवंबर को लाल किला विस्फोट मामले में गिरफ्तार 3 डॉक्टर और एक मौलवी की NIA हिरासत 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। NIA ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसे सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में आज 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें नक्सलियों की केंद्रीय समिति का सदस्य और एक सरगना भी शामिल है। ये नक्सली मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सक्रिय थे। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में घने कोहरे की स्थिति जाहिर की है। अगले 2 दिनों के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग इलाकों में इसी तरह की स्थिति बने रहने की उम्मीद है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में और अगले 4 दिनों के दौरान महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की उम्मीद है। इस बीच दिल्ली NCR में आज शाम वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्थानों से छात्राओं और महिला कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम, सम्मेलन तथा सेमिनार आयोजित करने का अनुरोध किया है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इससे लैंगिक संवेदनशीलता, नेतृत्व विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप दे रही है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा फर्जी है। सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक खबरों की पहचान के लिए तकनीकी और उपकरणों की समझ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। न्यू मीडिया विशेषज्ञ शाली इत्तमन भ्रामक खबरों की पहचान और उससे संबंधित विषयों पर श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 01132318017173717106 और 2331444 पर सवाल पूछ सकते हैं। पुरुष हॉकी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा मुकाबला आज रात 10:30 बजे केप टाउन में खेला जाएगा। भारत ने पहले मैच में कल दक्षिण अफ्रीका को 5-2 से हराया था। दोहा में निशानेबाजी विश्व कप में फाइनल में भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 6 पदक अपने नाम किए हैं। भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। सिमरनप्रीत कौर बरार और सुरुचि सिंह ने स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, अनीश और संयम ने रजत पदक जीते। वहीं सम्राट राणा ने कांस्य पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रगीत ने आजादी के आंदोलन में जान फूंकी और पीढ़ियों को प्रेरित किया। संसद ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पारित किया। सरकार ने हवाई सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए विमान सेवा रद्द होने के बाद आए संकट पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। भारत ने देश विरोधी चरमपंथियों पर ब्रिटेन की कार्रवाई का स्वागत किया। चीन से ट्रांजिट के दौरान भारतीय यात्रियों को परेशान नहीं करने को कहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में शीतलहर की संभावना व्यक्त की। और पुरुष हॉकी में भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा मैच आज रात केप टाउन में।